Svirane! शाम तो इस सुंदर पवित्र स्थान में आप सबका स्वागत है। रीबोल, सबसे पहले आप इन तीन वृक्षों को देखो। ये बरगद का पेड़ है, बहुत विशाल, ये शिव जी का स्वरूप है। और वहां पर आप जा खड़ी हैं, लेफ्ट में देखो, ये पेड़ जो है ये दो पेड़ों का मिलन है। देखो, राइट में पीलू का पेड़ है, लेफ्ट में इमली का पेड़ है, दोनों एक साथ में उग रहे हैं, सहजीवन। ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको ब्रज में बहुत मिलेंगे, बरगद और पीपल, पीपल और पीलू, पीलू और बरगद, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस। पुराने ज़माने में वृंदावन की परिक्रमा में, गोवर्धन की परिक्रमा में, बरसाने में, सब जगह पर ऐसे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। हमारी जो वृंदावन की यात्रा हुआ करती थी, वो सबसे पहले शुरुआत उसकी कृष्ण बलराम पेड़ से हुआ करती थी। वहाँ पर ऐसा दृश्य था कि बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर इस प्रकार से पीपल का पेड़ बना हुआ था, जैसे कृष्ण के कंधे पर बलराम जी ऐसे दो पैर छोड़ के बैठे हों, या कृष्ण के कंधे पर राधा रानी ऐसे बैठी हो, एक पैर यहाँ एक पैर पीछे, ऐसा एग्जैक्ट दृश्य था। और उसी पेड़ से हमारी यात्रा गुरु महाराज शुरू करते थे, शुरुआत की। अभी भी वो पेड़ है, लेकिन राधा रानी के दोनों पैर अभी नहीं है, ऊपर का जो पीपल का वृक्ष है वो भी नहीं रहा, लेकिन अभी तक वो जो पेड़ है शायद इमली का है कि बरगद का याद नहीं मुझे, लेकिन अभी भी है। यहाँ पर बहुत फल वाले खड़े रहते हैं लाइन से, पूरे गली जाते हैं अंदर, उसी के किनारे पर वो बड़ा वृक्ष है, बहुत पवित्र प्राचीन वृक्ष है। एनीवेज, तो ये स्थान का नाम है पीली पोखर। क्या बोला मैंने? उसका और एक नाम भी है प्रिया कुंड, क्योंकि ये वृषभानु महाराज का और एक प्राइवेट कुंड है। एक सुबह मैंने बोला बताया था, उसका नाम क्या था, जहां पर कंस जो है वो गोपी बन गया था, भानुखर। सुबह से शाम तक हमारी मेमोरी एवेपरेट हो रही है, क्यों ऐसे? तो जिंदगी भर याद रखना है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये इस कुंड में राधा रानी, वृषभानु महाराज, कीर्तिदा महारानी सब लोग स्नान करते थे, और ये बहुत ही इतना सुंदर स्थान है, इसके अंदर इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और अभी एक घंटा हम लेट चल रहे हैं, इसलिए हमको वो संक्षिप्त में ही बताना पड़ेगा, है ना सब कुछ। उसके पहले जहां आप गए थे खायरा, क्या कहाँ गए थे आप? खदीर वन, उसका पौराणिक नाम है। तो खदीर वन, खदीर का अर्थ होता है कत्था, वो जो पान खाते हैं ना लोग, तो वो लाल रंग क्या देता है उसके अंदर, उसको कत्था कहते हैं, और आयुर्वेद में उसको खदीर कहते हैं। और वो खदीर जो है बहुत औषधि वस्तु है, और गला जब खराब होता है ना तो हम उसको चूसते रहते हैं, खदीरादी वटी, जो गले के लिए बहुत अच्छा रहता है, और भी बहुत उपयोग है उसके मेडिकल। तो वहाँ पर बहुत खदीर के पेड़ हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम है खदीर वन। दूसरी उसकी विशेषता यह है कि नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद महाराज, उनकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है खदीर वन, और वो जो आपने सरोवर देखा ना, वो उनका प्राइवेट कुंड है, जिसका नाम बाद में पड़ा माधव सरोवर, उसका बाद में पड़ा। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उसके विधान मिलते हैं, लेकिन मेनली माधव सरोवर वो सरोवर है जहाँ पर नंद उपनंद बाबा की गाय जल पिया करती थी, और कृष्ण बलराम भी अपनी गायों को लेकर वहाँ पर जल पिलाया करते थे। और वो था ना, जिस दिन यशोदा माई ने कृष्ण भगवान को बांधा था, उस दिन बलराम जी कहाँ थे? उस दिन बलराम जी उपनंद जी के आमंत्रण पर रोहिणी के साथ खदीर बन गए थे, प्रेम के वश। इसलिए वो बलराम जी का बारे में कृष्ण कहते हैं, अरे बलराम जी दाऊ भैया किधर हो, मैया बांध रही है मुझे, अरे रोहिणी मैया आप कहाँ हो, आप नहीं हो इसलिए मुझ पर यह अत्याचार किया जा रहा है, कहाँ हो आप? क्योंकि वो उस समय नहीं थी वहाँ पर, बाद में आती है, बांधने के बाद खबर मिलती है तो आ जाते हैं वो। एनीवेज, तो खदीर वन में कृष्ण बलराम एक बार अपने गायों को बछड़ों को, उस समय बछड़े ही उनके साथ में थे, भगवान के ना गौचारण के दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है वत्सपाल लीला, वत्स यानी बछड़े, बछड़े को वत्स कहते हैं, तो बछड़े या बछिया जब चराते थे तो उनको वत्सपाल कहते थे, तो उम्र के एक साल से पाँच साल तक उन्हें वत्सपाल लीला किया, पाँच साल में उनको गोपाष्टमी के दिन बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया गया, तब से वो क्या बने, गोपाल, गोपाल बने, तो गोपाल बनने के बाद वत्सों ने आना बंद किया, नहीं गए, गायें भी जाती रही, बैल भी जाते रहे और बछड़े भी जाते रहे, और बाय द वे बकरियाँ खरगोश हिरन सब जाते थे, भैंसे भैंसा एवरीबडी वॉज गोइंग, कौन छोड़ेगा कृष्ण के साथ जाने का मौका, ऐसा पूरा कारवा निकलता था, लेकिन प्रधान लीला गौचारण की, इसलिए उनको गोपाल कहते हैं। तो वहाँ पर जब एक दिन वत्सपाल लीला के अंतर्गत जब कृष्ण वहाँ पहुँचे, सब ग्वाल बालों ने वहाँ पर पानी पिया, गायों ने पानी पिया, उतने में सब लोग ने बताया देखो 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 कौन है यहाँ पर, तो ना जिसका शीश बादलों में था ऐसा एक बगुला वहाँ बैठा हुआ मिला। देखो पहले बताया डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ बगुला बैठा है तो एक ठीक है, लेकिन वो बगुला जो है उसका सर बादलों में था, वो सो ह्यूज, उसको देख के ही डर लग रहा था, तो ग्वाल बाल डर गए, बोले कन्हैया कन्हैया देखो, और वो कुछ बोल ही रहे हैं उतने में उसने चोंच खोला और कृष्ण को ही निगल लिया कंप्लीट, सेकेंड सरप्राइज, देखते देखते अभी पानी पी रहे थे तो क्या हो गया, तो सब लोगों ने क्या कहते हैं ना उसको आक्रोश किया, अरे खायरो है खायरो है खायरो है, मतलब खा लिया खा लिया खा लिया, तो नाम पड़ा गांव का खायरा, समझ में आया, खाए खायरो है मतलब खा रहा है, तो गांव का नाम पड़ा। मैंने क्या बताया था आपको, पहले लीला होती है बाद में धाम बनता है ना, तो इस प्रकार से जब निगल लिया तो सुखदेव जी भागवत में कथा करते हैं कि उन्होंने निगल लिया तो भगवान ने अपने आप को अंदर से एक्सपांड किया और गर्म भी किया, मतलब हॉट अग्नि तत्व को बढ़ाया आपने, तो वो चोकअप भी हो गया और गर्म भी हो गया अंदर से, तो उन्हें भगवान को निगल दिया और भगवान ने उसका वध कर दिया, ऐसे भागवत में लिखा है, क्योंकि भागवत में सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित महाराज को कथा कर रहे हैं उनके पास समय बहुत लिमिटेड था, 7 दिन के अंदर पूरा कथा समाप्त करना था, इसलिए विस्तार में कहने का वहाँ पर मौका नहीं था, जैसे हम लोग यहाँ संक्षेप में कर रहे हैं ना वैसे वो भी उन संक्षेप में कथाएं कर लेते। तो गर्ग संहिता में फिर नारद मुनि मिथिलेश जो मिथिला नरेश हैं उनको बता रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने भगवान को निगला ना तो सारे देवता एकदम डू और डाई पोजिशन में आ गए, अभी तो भगवान हमारे गए अभी हमको मरना ही है तो चलो लड़के मरेंगे, तो सारे देवता इकट्ठा हो गए आकाश में, और फिर मैं खाली नाम लेता हूँ, गणेश जी शंकर जी पार्वती जी वायुदेव इंद्र चंद्र शंकर जी फिर भद्रकाली फिर स्कंद, सब बताया ना मैंने, सारे प्रमुख प्रमुख देवता उनके प्रमुख प्रमुख अस्त्र लेकर वन बाय वन आए, चंद्र अपना निहारिका अस्त्र लेकर आए, मतलब क्या फ्रीजिंग, वो अस्त्र छोड़ेंगे ना तो सब बर्फ हो जाएंगे, अग्नि जो है वो अग्नि उत्पन्न करेंगे प्रलय काल की अग्नि, वायु ऐसे वायव्यास्त्र मतलब सब उड़ जाएगा जो भी है सामने सब उड़ जाएगा, सब बताता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा मुझे जितना याद है, जो चंद्र ने चला ना निहारिका तो वो कुछ दिन कुछ समय कुछ घड़ी तक ही वो थोड़ा सा मूर्छित हो गया क्योंकि ठंडा हो गया, जब अग्नि ने वायव्यास्त्र छोड़ा ना जो प्रलय काल में छोड़ते वो कुछ उसके रोम जल गए खाली सम हेयर दैट्स ऑल, शिव जी ने वो चलाया ना अपना त्रिशूल तो उसके एक पंख कट गई, स्कंद ने अपना शक्ति चलाया तो एक पांव टूट गया, लेकिन हर बार तिल मिलावता हुआ उठा, ब्रह्मा जी आए ब्रह्म दंड लेकर 2 घड़ी तक मूर्छित रहा, यमराज आए यम दंड लेकर यम दंड टूट गया, ऐसे एक एक देवता का अपराजेय अस्त्र एंड इनडिफिटेबल वेपन सब फिनिश हो गया, उसके आगे भवानी आई तलवार लेकर उसके लिए उसने दूसरी पंख काट दी, उसकी एक पंख शिवजी ने काटी एक पंख पार्वती ने काटी, इस तरह से सारे अस्त्र निष्फल हो गए, तो सब देवता लोग प्रश्न करते हैं अरे हाउ इट इज पॉसिबल, कि सारे देवताओं के निष्फल हो रहे हैं, तो उसका उत्तर यह है कि दो उत्तर है उसके। एक उत्तर है कि श्री कृष्ण उनके अंदर थे, इसलिए कोई कुछ बाका नहीं कर सका उसका। और दूसरा था जो उसकी कहानी है जन्म की, वो बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। उनको वरदान था कि आपको कृष्ण के हाथों ही मरना है, इसलिए कोई भी देवता उसको मार नहीं सके। एक सीन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि आकाश में लोग देख रहे हैं सब यहाँ से, कि वो जो बगुला है वो अकेला सारे देवताओं को खदेड़ रहा है। दे ऑल आर रनिंग, ऑल फोर डायरेक्शन दे आर रनिंग, और वो अकेला सबको खदेड़ रहा है। तो ये सब होने के बाद तब तक कृष्ण उनके आराम से पेट में बैठे हुए। और यहाँ से आगे एक भागवत की कथा शुरू होती है, ये सब भागवत में नहीं दिया है। तो ये सब हो गया, सब देवता हार गए, तो भगवान ने फिर अपने आप को उष्ण बनाया और प्रसारित किया, तो उसने उन्हें उगल दिया। तो फिर वो ज़्यादा कृष्ण के पीछे भागने लगा, तो कृष्ण की उसकी बहुत लंबी मुठभेड़ हुई। सब देवता लोग हैं ना आकाश में घबराए हुए, सब नीचे ग्वाल बाल घबराए हुए देख रहे सीधा तान के, ऐसा क्या हो रहा है अभी, क्या होगा क्या होगा, दोबारा निकल लेगा तो क्या होगा। तो उतने में क्या किया भगवान ने, ऐसी चपलाई दिखाई, चपलता दिखाई, एक पैर उसके खुले हुए चोंच पे रखा, एक हाथ से उसकी चोंच को फाड़ दिया पूरा, जैसे कोई होता ना तिनके क्या पत्ता कैसे फाड़ते हम लोग, ऐसे ऐसे उसका मुंह फाड़ दिया। और वही उसका काम तमाम हो गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई तो देवताओं ने थोड़ा सा मोरोज हो गए थे ना वो, तो एकदम उत्साहित हो गए, पुष्प वृष्टि किया उनके ऊपर। और फिर क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उनकी जो ज्योति है आत्म ज्योति, वो भगवान में विलीन हो गई। तो मिथिलेश नरेश जो है, मिथिला नरेश, वो पूछते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो इतना पापी राक्षस। तो उनका इतिहास बताया उन्होंने, उनका इतिहास ये था, ये एक हायग्रीव नाम का राक्षस था, जिसका शरीर मनुष्य का और गला जो है वो घोड़े का, हाय यानी घोड़ा और ग्रीव यानी नेक, तो यहाँ के ऊपर का भाग घोड़े का, नीचे का मनुष्य का। और उसने ऐसा तपस्या किया था, तो उसको ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया था, मांगा था उसने कि मुझे ना कोई मार नहीं सकना चाहिए, जो मेरे जैसा है वो मुझे मार सकता है, ऐसे वरदान मांगा। बहुत ही चतुर था वो, उसको पता था कि ब्रह्मा जी के 84 लक्ष योनि में ऐसी कोई योनि ही नहीं है, तो कौन बनेगा मेरे लिए और कैसे मरूंगा मैं। तो भगवान ने फिर हयग्रीव का अवतार लिया, हयग्रीव स्वयं घोड़े का शीर सिर और मनुष्य का शरीर, और फिर हयग्रीव को मारा। तो ये हयग्रीव का एक बच्चा था, उसका नाम था उत्कल, राक्षस उत्कल। इतना पराक्रमी, इतना सौंदर्यवान, इतना ऐश्वर्यवान था, सभी देवताओं को एक साथ परास्त करके 100 स्वर्गीय वर्ष उसने स्वर्ग पर आधिपत्य जमाया अपना। ही वॉज द किंग, इंद्र वॉज हाइडिंग। तो ऐसे जैसे भी बहुत ज़्यादा यश मिलता है ना आदमी, आदमी के लिए बहुत यश अच्छा नहीं है, कंटिन्यूस यश जो है ना वो आदमी का नुकसान करता है, क्योंकि अपयश पचाना भी मुश्किल है, लेकिन अपयश से ज़्यादा पचाना मुश्किल है यश, सक्सेस डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सक्सेस है ना दिमाग में घुस जाता है, अहंकार के रूप में अपने आप को दिखाता है वो। तो इसको भी अहंकार हो गया, अब मुझे कौन हरा सकता है, मैं तो सुंदर भी हूँ, जवान भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, अपराजित भी हूँ, क्या हर चीज़, व्हाट यू वांट टू बी प्राउड ऑफ, सब कुछ उसके पास है। तो ऐसे ही घूमते घूमते मद मस्ती में एक बार जाजली मुनि के आश्रम में आया। अभी जाजली मुनि का कैसा महात्म्य है देखो, जाजली मुनि के आश्रम में ना शत्रु जो प्राणी है, शत्रु प्राणी जैसे हिरण और शेर है, और जैसे हाथी और सिंह है, ये सब वहाँ पर फ्रेंडशिप में रहते थे। उनके होने का इतना प्रभाव था कि सारे शत्रुत्व वाले प्राणी मित्रत्व में रहते थे उधर। संतों का ये बहुत बड़ा शक्ति होता है, जहाँ पर वो रहते हैं ना वो एक शांतता और सुकून निर्माण करते हैं जहाँ पर भी रहते हैं। तो जाजली मुनि के आश्रम में जंगल में था उनका आश्रम, लेकिन सब प्राणी ऐसे पूरे प्रेम से रह रहे, तो हौद भी है, उस हौद में मछलियाँ भी घूम रही है। तो आ गया और हौद के किनारे ऐसे बैठ गया, उसके हाथ में एक ऐसा था लंबा डंडा जिसके अंदर होल था, ऐसे यहाँ से होल था, जैसे समझो मुरली, समझो लेकिन मुरली नहीं कह सकते उसके, बहुत बड़ी है। तो ऐसे होल था, वो डाल दिया उसके अंदर उसने। तो मछली को कैसा होता है, कुतूहल होता है, क्या है क्या है, तो होल में चले जाते। तो क्या करता था, थोड़ी देर देखता था, 5-6 मछली अंदर आके टक करके खा लेता था उसको, फिर वापस रखता था। फिर कुछ मछली अंदर कुतूहल से आई, ऐसे उड़ा के खा लेता था। तो जाजली मुनि वहाँ पर आए, बोले अरे क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ पर कोई हत्या वत्या करता नहीं है, सब ठीक नहीं है। दुर्लक्ष कर दिया। अरे क्या मुनि की सुनना है, जो और क्या कर सकता है। तो मुनि होते हैं, दिखते बहुत सिंपल है, लेकिन केवल मुख्य वाणी से सबका सर्वनाश कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। चाहते नहीं है लेकिन। तो बोले बहुत मछली खाने का शौक है, जा बगुला बन जा। बस वेरी सिंपल, बगुला बना दूंगा ध्यान रखना, ऐसे कुछ नहीं, एक सेंटेंस में बोल दिया, बहुत मछली खाने का शौक है जा बगुला बन जा। उधर के उधर ही बगुला बन गया वो। अभी सौंदर्यवान देवता जैसा शरीर, सिद्धि संपन्न शरीर से बैठा हुआ है, अचानक वो बगुला बन गया। तो उधर के उधर बोलते ना मराठी में, खार का अहंकार उतरला, एक झटके में सब अहंकार जमीन दस्त हो गया। तो उधर ही एकदम नतमस्तक हो गया, महाराज जी क्षमा करना। अभी बोला संतों की वाणी जो आकाशवाणी जैसी होती है, वापस नहीं आ सकती। लेकिन नम्रता को देखा उसके, तो संतों को दया आ गई उनको। उन्होंने कहा ठीक है, बगुला तो बनना ही तुमको। कहते हैं 4 कोटि वर्ष तक बगुला बन के रहोगे। ये गर्व है ना, बहुत खराब चीज़ है, आपको पता नहीं लगेगा क्या उसका परिणाम और कब तक झेलना पड़ेगा उसका। थोड़ी सी मिस्टेक, लेकिन अहंकार वश की हुई, देखो परिणाम क्या हुआ। कभी छाप दिया और द्वापर के अंत में बोला कि कृष्ण आएंगे तो तुमको निगलेंगे, उनके स्पर्श से तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं उनका जो है ज्योति भगवान के अंदर विलीन हो गया। तो संतों का शाप कभी भी शाप नहीं होता है, वो हमेशा वरदान ही होता है। ऐसे ही मस्ती में घूमते रहता ना तो आगे भी बहुत सारे अपराध करता। लेकिन आप भागवत पढ़ेंगे, गर्ग संहिता पढ़ेंगे, सारे कृष्ण की कथा पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा हर एक राक्षस है ना, उसका संत का संपर्क हो गया है, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट हो गया है संत का, कहीं ना कहीं उनका अपराध हो गया है, संपर्क हो गया है, कुछ शाप मिला है और उसके वजह से उनको कृष्ण का दर्शन हुआ है और कृष्ण के या बलराम के हाथों से उनका वध हुआ है, जो सब सबसे बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो ऐसे ही जाते थे अपने कर्मों को लेकर, कहीं ना कहीं अनंत काल तक भोगते थे। वही वो मदमस्त थे ना, वो मणिग्रीव और क्या नाम उनका, नल कुबेर, कोई शराब पी के नग्न होकर मस्ती कर रहे हैं। अगर वो नारद मुनि नहीं आते तो वही सड़ते वैसे ही रहते। जब शाप मिला तो नम्र हो गए, शुद्ध भक्त बन गए, भगवान की कृपा हुई, बाल लीला का दर्शन हुआ। तो सारे संतों का यही कृपा है, शाप बोलो वरदान बोलो, वरदान ही वरदान है वो, इट्स ऑलवेज वरदान ओनली इन डिस्गाइज। तो वो खदीर वन की कहानी है। तो माधव सरोवर के किनारे में भगवान ने बकासुर का वध किया। वो बकासुर जो था वो अघासुर का भाई था, पुतना का भी भाई था, पुतना उनकी बहन थी। अघ, बक और पुतना, ये परिवार है राक्षसों का, सबका कल्याण भगवान ने किया। बहुत सुंदर जगह है वो, और वहाँ पर हमारे लोकनाथ जी महाराज जी ने भी तप किया है। उसके आगे एक गांव है उमराव, वहाँ पर राधा रानी को उमराव बनाया गया। उमराव का मतलब क्या है, लेडी क्वीन। हमको उमराव कहते कुछ अलग ही याद आता है, लेकिन हमको वो याद आना चाहिए, खदीरवन वाला, समझे ना, बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन दे रहा हूँ। तो वहाँ पर राधा रानी को एक बार रानी बनाया गया था, और छत्रवन में ग्वाल बालों ने कृष्ण को राजा बनाया था। और कैसे राजा बनाया, तो कृष्ण अपने मंत्रिमंडल बना दिया, है सीतामा तू अर्थमंत्री, तू सुरक्षा मंत्री, सब बना दिया और राज कारबार चालू किया। तो यहाँ पर उमराव में जो राजा रानी रानी बनी थी, वो खबर मिल गई कि एक ढोंगी राजा वहाँ पर राज चला रहा है। तो रानी आदेश देती है, राजी रानी नहीं, रानी की प्रधानमंत्री ललिता देवी, मतलब सुरक्षा मंत्री, जाओ उनको कैद करके लेके आओ। तो सभी सखियाँ फूलों की लकड़ियाँ, मतलब डंडियाँ लेके, जो फूलों से लदी हुई है, लेके जाते हैं और जाकर पूरा हमला बोल देती है सभा में। और इतनी संख्या में आती है कि सारे राजा को, राजा के मंत्रियों को, सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं पीट पीट कर, और जाकर उमराव में उनको प्रस्तुत कर दिए। जैसे हम लोग करते हैं ना, कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, तो ये है गुनहगार, क्या दंड दिया जाए। बोले मुकुट उतारा जाए पहले, उसका खेस उतारा जाए, और उनको कहा जाए। राधा रानी कुछ नहीं बोल रही है, सब मंत्रीगण ही बोलते हैं। हाँ, तो राधा रानी के सामने मुकुट उतार कर, खेस उतार कर, कृष्ण भगवान नतमस्तक हो जाते हैं। तो फिर ललिता कहती है क्या किया जाए, बोले छोड़ दो इसको, और वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। तो वो जगह है उमराव, और वहां पर हमारे लोकनाथ जी महाराज ने भजन किया था, और वहीं पर लोकनाथ जी महाराज ने नरोत्तम दास को दीक्षा दी थी। वो गांव है उमराव, बहुत सुंदर। और उसके आने जगह पर एक गांव था, उसका नाम है पिपासा वन। यहाँ पर बहुत रिसर्च किया, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन वो इतना दूर और इतना अंदर था कि वो एक दिन का काम था पूरा, जाना और आना। तो उसकी कथा बताना तो प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा प्रचंड शापित होकर अश्वत्थामा आए थे, पीड़ित होकर, दर्द में तड़प तड़प कर वहाँ पर आए थे। ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास गिड़गिड़ाकर कोई नतीजा न पाते हुए वहाँ पहुँच गए थे, ब्रह्मा जी के सलाह के अनुसार कि यू कैन ट्राई, राधा रानी को जाके पुकारो। तो वहाँ पर अश्वत्थामा ने रो रो कर राधा रानी को पुकारा, राधा रानी प्रकट हो गई और अश्वत्थामा को स्पर्श किया, उसका जख्म भर गया, खून बहना बंद हो गया, दर्द खत्म हो गया, और वो तत्काल राधा रानी का शुद्ध भक्त बन गया। राधा रानी ने कृष्ण का अधिकार, कृष्ण के शाप की मर्यादा को लांघ कर अश्वत्थामा को करुणावश क्षमा कर दी, और अश्वत्थामा को कहा अभी आप यहीं रहो और मेरे पिपासा वन का रक्षण करो। ये मेरा पिपासा वन है, जहाँ पर हमारी मिलन की प्यास जब तीव्र होती है तो उसको पिपासा कहते हैं। जब हम पिपासा में पहुँच जाते हैं तो हम यहाँ आते हैं और रासलीला करते हैं। तो हमारा ये बहुत प्रिय वन है, एकांत वन है, बहुत प्रिय वन है, इसकी रक्षा करो। तो अश्वत्थामा जी आज भी वहीं रहते हैं, और जो संत वहाँ पर शुद्ध हृदय से भजन करते हैं उनको दर्शन भी देते हैं। बहुत अद्भुत वन है वो। वहाँ पर कोई किसी भी भगवान के सेवा के अलावा कोई का पेड़ का काटकर लकड़ी का उपयोग करता है? दोबारा सुनिए, भगवान की सेवा के अलावा, यानी कुछ विवाह है, संस्कार है, यज्ञ है, पूजा है, लकड़ी लगती है ना, उसके अलावा अगर कोई स्वार्थ के लिए लकड़ी लेता है वहाँ से, तो व्यक्ति या तो अंधा हो जाता है, उसको पैरालिसिस होता है, लकवा मार जाता है, या तो वो मर जाता है। और ये एक कैंप में हमारी आँखों के सामने हुआ है। एक जवान लड़के ने ऐसे मस्ती में जाकर लकड़ी लेके घर पे आए, घर आते आते खदीर वन में अंधा हो गया वो। तो किसको पता नहीं चला, डॉक्टर लोग देख रहे हैं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंधा क्यों हो गया। लेकिन बुजुर्गों को पता था कि ये पिपासा वन की महिमा है। बोला मूर्ख व्यक्ति जाओ, अभी वो खुद अंधा हो गया, खुद जा नहीं पाएगा अकेला, जाओ उसको ले जाओ, लकड़ी को वहाँ छोड़ के आओ। तो बेचारा उसको लेके लकड़ी को छोड़ने के चार लोग, क्योंकि वो कैसे जाएगा अभी, लकड़ी छोड़ते आँखें वापस आ गई उसकी। बुजुर्ग ने कहा बताया था ना कि पिपासा वन के साथ मस्ती मत करना, इसलिए पिपासा वन में लकड़ियों के ढेर लगे रहते हैं। क्यों, आपने कुछ लकड़ी काटी, आपका विवाह संस्कार हो गया, लकड़ी बच गई तो वापस छोड़ के आते हैं, बची लकड़ी सब जमा करते हैं ऐसे स्टैक। तो पिपासा वन में आपको चलेंगे ना अंदर, सब जगह स्टैक से स्टैक नजर आएंगे, क्योंकि तो जितने भी सेवा में लकड़ी दे गए उसकी एक टुकड़ा भी बचा हुआ घर पर रखते नहीं है। अगर आँख प्यारी है, मसल स्ट्रेंथ प्यारी है, और ज़िंदगी प्यारी है, छोड़ के आओ डंडा वहाँ पर, वहाँ घर में मत रखो, बंदरों के लिए मत रखो, दूसरा ले लो, वहाँ का छोड़ो वहाँ पर। ऐसे बहुत सुंदर बने, हमने बहुत दर्शन किया था, लेकिन वो ना पैदल 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 ही जाना पड़ता है बहुत दूर तक। एनीवेज, तब बिल पोखर में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? हाँ पहुँचेंगे, शायद पहुँच सकते हैं। तो प्रिया कुंड ये वो स्थान है, नारद सॉरी दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया था। राधा रानी ने उनको बड़ी बड़ी सम्मोहिनी भाषण करके, सम्मोहित करके मिट्टी की खीर खाने को दी थी, मिट्टी के बनी हुई खीर खेल खेल में खाने को दी थी। और वो पहले गुस्सा किया उन्होंने, मिट्टी खिला रहे हो, लेकिन फिर खाया उसको उन्होंने, क्योंकि वाणी इतनी मधुर और सम्मोहित, सम्मोहित क्या कहते हैं, सम्मोहिनी वाणी है उनकी, तो मोहित हो गए और चिल्ला चिल्ला के खा रहे हैं उसको। जब खा रहे हैं तो उनको दिव्य खीर साने खाद, दिव्य खीर आस्वादन करने का अनुभव हो रहा है, आंखों से अश्रु आ रहे हैं प्रेम के, रोमांच खड़े हो रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है, शरीर कंपन हो रहा है, और खीर खाए जा रहे हैं, और मतलब मट्टी 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 खाए जा रहे हैं, ब्रज की रज, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो राधा रानी को वरदान देते हैं कि इसके हाथ से जो भी बनेगा ना वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो भी इसको खाएगा वो सदैव विजयी रहेगा। क्या हो गया, विजय हो गया? राधे श्याम। अच्छा फुल चार्ज किया था उसको। हरे कृष्णा।
राधे राधे, लाओ जल्दी लाओ उसको, जगह बनाओ जगह, हरी बोल यहाँ से आ जाओ, कम ये जगह जगह बनाओ, जल्दी जल्दी जगह बनाओ, इधर रखो उसको, इधर ही रखो, लाओ बोला उसको, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बीच में बताओ उसके, बताओ क्या करना है,
चैनल इसका चेंज करो,
मैं भी करो ना इसे इधर से, मैं कर सकते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण, रवि किधर, रवि ओके कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, मैं क्या बोल रहा था,
दूसरा माइक,
हाँ तो वो जो भी खाएगा वो विजयी बनेगा और सब रोग से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, तो ये खबर सब जगह फैल गई, यशोदा मैया के पास भी फैल गई, तो उन्होंने एक बार आके एक उत्सव में रिक्वेस्ट किया कि राधा रानी को आप ज़्यादा हाथ मत करो, आप लोग यहाँ सुनो, वो लोग अपना काम करेंगे, डोंट वरी, महेश कोचरेकर, महेश कोचरेकर कम हियर, ओके सो यशोदा माई ने फिर एक समारोह में आकर यहाँ पर विनती की कि राधा रानी को वहाँ पर भोजन कराने के भेजो, तो राधा रानी ने बहुत समय तक भोजन कराया, यहाँ से जाना आना, एक दिन उनका स्वभाव व्यवहार प्रेम कुशलता देखकर मैया के मन में इतना प्रेम आया, बोले रोज का आना जाना का जरूरत क्या है, यहीं रखा जाए उसको, तैसे गले लगाया बड़े प्रेम से, आलिंगन दिया बहुत सुंदर, और उस भाव विभोरता में हल्दी लगा ली दोनों के दोनों हाथों में उसके, तब बोले सो वॉट, हल्दी इज टर्मरिक, उसमें क्या है, पर भारतवर्ष में हल्दी लगाने का अर्थ होता है वाग निश्चय, एंगेजमेंट है ना, हाथ प्योड़े केले धाले, हाथ पीले कर दिए, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर राधा रानी को बहुत आनंद हुआ, मन में बहुत आनंद हुआ, बहुत दिनों की इच्छा जो संकोच था उनको वो पूरा हो गया, उसको यहाँ रखो, ओके हरे कृष्णा, आवाज बढ़ा दो उसका, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एडिटिंग का काम बढ़ गया, तो फिर हल्दी लगा दिया तो बहुत खुशी हुई, तो मानो वहां से हवा में उड़ते यहाँ पर आ गए, इनको खीर खाने का क्या खीर दोपहर में था, खत्म हो गया वो
राधा रानी के हाथ का खाना,
तो राधा रानी के हाथ से उनको बहुत दिन तक भोजन प्राप्त हुआ, उसकी भी बहुत लीलाएं हैं, जब राधा रानी बनाती थी तो क्या होता था इंटरेक्शंस वगैरह, लेकिन बहुत दिनों के बाद में जब भी राधा रानी ने भोजन कराया तो माता जी जो है वो रोज देख रहे ना उनको, बहुत प्रेम उमड़ रहा है, एक दिन बहुत ज्यादा प्रेम भाव विभोर हो गए और आलिंगन दिया राधा रानी को, और आलिंगन देकर हाथ पीले कर दिए हल्दी से, तो इतनी खुशी हुई, माता भी इतनी भाव विभोरता में थी, इतने आनंद में थी, और फिर वहाँ सखियाँ राधा रानी को लेकर निकले, तो मैं कह रहा था कि वहाँ पर हवा में उड़ के आए, मतलब पैर जमीन पर नहीं रहे थे, इतना खुशी हो रही थी उनको, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पैर जमीन पर आ गए, मतलब होश में आ गए वो। अरे मैया क्या कहेगी, मैया ने तो भोजन बनाने के लिए भेजा था, एंगेजमेंट करके आने के लिए नहीं भेजा था, है ना। तो बड़ा टेंशन हुआ उनको। तो जब भी कुछ समस्या होती है तो समस्या जाती है ललिता के पास, ललिता क्या करना है, सखी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, अभी ऐसा ही समय था, ये समय देखो कैसा है, ट्वाइलाइट, कोई नहीं यहाँ पर, शांति, पूरा अंधेरा हो रहा है, और वो सखियाँ ही थी खाली, पीली पोखर के पास में, यहाँ प्रिया कुंड के पास में आ गई। और ललिता कहते हैं कि आप यहाँ हाथ धो लो अच्छी तरह से, हम भी आपकी मदद करेंगे हाथ धोने के लिए, और अच्छी तरह हाथ धोएंगे घर चले जाएंगे, कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं, ओनली वी नो, नोबडी एल्स नोज। तो वो हाथ धो रही राधा रानी, तो विचार कर रही हैं एंगेजमेंट रखूं कि तोड़ूं, क्योंकि रखेंगे एंगेजमेंट तो फिर यहाँ से आना जाना, कोकिल बनकर मिलना, ऊपर से संकेत करना, संकेत वन में मिलना, वो लुका छुपी रोज की वो सब समाप्त हो जाएगी, तो थ्रिल ना थ्रिल वो सब खत्म हो जाएगा। और अगर एंगेजमेंट तोड़ दूंगी तो फिर रोज का आना जाना पड़ेगा, वो उनकी संग की तड़प तड़पती रहेगी, क्या करूँ क्या करूँ, रखूँ कि नहीं रखूँ, ऐसे करके करके वो सब निकल गया हल्दी, फिर भी हाथ को ही मल रही है और बैठ के ऐसे खो गई है पूरा। तो ललिता आके जगाती, अरे निकल गया अभी चलो घर पे, तो सब घर पे चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग यहाँ पर, गांव के लोग आते हैं अपना रोज का काम करने के लिए, तो देखते हैं कि कल तो पानी बहुत ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी, आज पीला हो गया पूरा। ये मत पूछना कि एक हाथ में लगाए हल्दी से पूरा कुंड कैसे पीला हो गया, ये सब दिव्य लीला है, लॉजिक लीला नहीं है। गुरुजी बताते हैं लॉजिक घर पे छोड़ के आना जब कृष्ण की लीला सुनते हो तब। तो वो इतने प्रेमी थे ब्रजवासी लोग, वो सब समझ गए, मतलब वन प्लस सब जोड़ जोड़ के कड़ी ऐसे पूरी माला बना दी उन्होंने, एक स्टोरी बना दी पूरी, जो एक्चुअल स्टोरी थी पूरी बना दी, ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा, बाद में हो गया होगा, उसका हो गया निकाल दिया और हो गया, समझ में आया आपको, है ना, हो गया होगा, इट मस्ट हैव बीन, नहीं इट इज, ऐसा कर दिया पूरा। और सब लोग खुश भी हो गए, सब लोगों ने एग्रीमेंट भी किया, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, सब लोग भाग के गए, चलो बधाई देने चलते हैं। तो बधाई देने ऊपर चले गए, अभी देखो माता पिता को कुछ पता नहीं है, खाली लड़की को पता है, तो बधाई हो वशवानु महाराज, बधाई हो कीर्ति मैया। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, किस बात की बधाई, अरे आपकी बेटी की सगाई हो गई नंदलाला के साथ। तो उनको इतना एम्बेरसमेंट हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सीधे राधा रानी को देखा, राधा रानी ने नीचे देखा क्योंकि सारा नॉलेज तो उसके पास था। तो कभी कभी मौन का मतलब क्या होता है, आई एग्री। तो उनको राधा रानी को डर था कि बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन वो बड़े खुश हो गए क्योंकि उनके भी मन में बहुत दिन से ये प्रश्न था, कैसे बात छेड़े, कैसे बात छेड़े, हमको ये नाता जोड़ना है, ये सोयरिक रिश्ता करना है, लेकिन कैसे शुरू करें। उनको लगा अच्छा हुआ शुरुआत वहीं से हुई, हमारा कितना आसान हो गया काम, अभी हम लोग इनको एक गिफ्ट भेज देते हैं और जो भी उन्होंने किया है उसको अप्रूवल दे देते हैं। महाराज जी बैठे 2 मिनट के लिए, महाराज जी 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठे आराम से, आप बैठे उधर बैठ जाइए, यहाँ का बैठते हैं थोड़ा सा कथा में। तो तो मणि भेज दिए वहां पर, कृष्ण भगवान ने वो मणि को उगाला और मणि की खेती की, हाँ मोती कुंड में, फिर वहां से मोती आए, राधा रानी ने उसको डबारा में मोती के द्वारा रत्न उगले रत्न कुंड में। तो ये प्रिया कुंड है, यहाँ पर राधा रानी के हाथ उन्होंने धोए थे इसलिए वो कुंड पीला हो गया, तब से उसका नाम पड़ा पीली पोखर। दूसरी कथा उसकी यह है, ये जो मंदिर है ना यहाँ पर, आप जाएंगे ऐसे तो देख के जाना, ये मंदिर प्रियेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पर शंकर जी महाराज बाल राधा रानी का दर्शन करने आए थे। तो राधा रानी उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, पहले डर गई थी सांप वाप देखे, तो मैया ने समझाया ये महादेव है। तो फिर राधा रानी ने उनको बड़ा प्रेम से उनको आशीर्वाद दिया और कहा यही रहो, तो यही रह गए, ये राधा रानी के शिव जी हैं, प्रियेश्वर महादेव बड़े पावरफुल महादेव जी हैं। इसी कुंड के तट पर जब राधा रानी एक बार, मैया सुपरविजन में है और सब सखियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ खेल रही है, सबके हाथ में मेवा है, मेवा खा रहे हैं और खेल रहे हैं, उतने में नारद मुनि जाए, उनके जन्म के समय भी आए थे वो,
थोड़ी बड़े होने के बाद में यहाँ पर आए।
नारद मुनि का वो ऋषि रूप देखकर राधा रानी बालिका डर गई, घबर गई और एकदम हाथ में जो मेवा था वो लेकर मैया के गोद में भागी और चुप चुप कर मुनि जी को देख रही है। तो मैया कहते हैं, अरे बेटी डरना मत, ये बड़े महात्मा महाराज है, ये आपके जन्म के समय भी आए थे और आपको गंडा बांधा था उन्होंने हाथ में, बड़े प्रतापी महाराज हैं। तो उनको डरते 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 देखा और फिर हाथ के मेवा नारद मुनि को दे दिए और नारद मुनि ने उनके महाप्रसाद को पाया और अपने आप को धन्य माना। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ यहाँ पर हुई है और एक लीला मैं कहे बिना रुक नहीं सकता, वो ये है कि राधा रानी जब यहाँ पर हाथ धोया और पोखर पीली हो गई, उसके बाद कृष्ण यहाँ खेलते खेलते आए। उनको वहाँ पर समय अधिक निकालना बहुत कठिन होता है, वो तो कुछ ना कुछ बहाना बना के आते हैं नंदगांव से बरसाने में। यहाँ पर आए तो उन्होंने भी पहले उसको क्लियर देखा था, अभी उसने पीला देखा उनको, उनको पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ। तो कृष्ण भगवान ना ऐसे सबको पूछने लगे, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, तो किसी को पता नहीं ये पीली वस्तु क्या है। तो वो पीली वस्तु क्या है क्या है ऐसे पूछते पूछते पानी में उतर गए और पुनः पानी में चले गए। कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि उनका मोर पंख और दो हथेली पानी के ऊपर घूम रहे हैं, ऐसे तीन वस्तु, और आकाश में ऐसे आवाज गूंज रही है, पीली वस्तु क्या है, बोलो आप लोग बोलो, पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। उसके बाद वो बाहर आए, तभी भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जब बाहर आए तो वो सांवले रंग के कृष्ण स्वर्ण रंग के बने थे, स्वर्ण गौर रंग के बने, और फिर भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। और इस बार एक परिवर्तन हुआ उनके अंदर, वो पूछने लगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, मुझे कृष्ण से मिला दो, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो सखा जो तो उनके साथ में आए तो व्याकुल हो गए, उन्होंने कहा तुम ही कृष्ण हो, नहीं मुझे कृष्ण से मिलाओ, मुझे कृष्ण से मिलना है, और दो दो रोने लगे। फिर वो सखा लोग उत्तर नहीं दे रहे, उनको पता नहीं क्या उत्तर देना है, तो वो पेड़ों को पौधों को वृक्षों को सबको पूछने लगे, आपने कहीं कृष्ण को देखा है, मुझे कृष्ण से मिलना है। और आप सोच सकते हैं ग्वाल बाल उनको अच्छी कंडीशन में खेलने को लेके आए थे, अभी घर जाने का समय आया तभी वही अवस्था में है, तो मैया को क्या जवाब देंगे, तो तुमने क्या खिलाया उसको, धतूरा खिलाया कि क्या खिलाया रास्ते में, ये क्या अवस्था को लेकर छोड़ के आए तुमने उसको, क्या जवाब देंगे। बहुत दुखी थे सब ग्वाल बाल, कहते दिन भर ऐसी अवस्था में रहते हुए शाम को वो थोड़े होश में आए, और शाम को होश में आने के बाद क्या हुआ, बहुत थक गए वो अलग भावना में थे ना, अलग स्तर पे, मतलब राधा रानी ने उनके अंदर प्रवेश किया था भाव रूप से, एक कुंड के हल्दी के माध्यम से राधा रानी उनके अंदर प्रवेश कर गई, और फिर राधा रानी के भाव में पूछ रहे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो फिर इतने थक गए थे सखा लोग उनको उठाकर घर पे लेके गए, बोले आज हमने बहुत खेला, हमने इतने खेले कि काना बहुत थक गया, उसको सोना है, और जल्दी सुला दिया उसको। तो उस रूप में कृष्ण ने इनडायरेक्टली ये घोषणा कर दी कि मैं अगले अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाला हूँ, इस भाव को ग्रहण करके। सबसे पहले कृष्ण ने यहाँ पर ये लीला के माध्यम से अप्रत्यक्ष रीति से यहाँ पर वो घोषणा कर दी कि अगले अवतार में मैं गौरांग महाप्रभु करके आने वाला हूँ। एनीवेज बहुत अद्भुत स्थली है ये, बहुत प्रेक्षणीय भी है, आँखों के लिए भी बहुत प्रेक्षणीय है, भाव से भी बहुत अत्युच्च स्थान है, हर तरह से ये दिव्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर आप दिल से प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि ये पीला रंग हमें भी लग जाए कभी, जिससे कृष्ण भी व्याकुल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, अपने आप को खो बैठते हैं, अपने क्या कहते हैं आइडेंटिटी को भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। ऐसी पावर है श्री जी के धाम में। तो उस दिन से प्रिया कुंड का नाम पीली पोखर पड़ा। बोलो जय जय श्री राधे।